पृष्ठ संख्या 170, त्रयोदश अध्याय, आलोचनात्मक विज्ञानवाद, कांट, इमानुएल कांट, सन 1724 से 1804 ईस्वी, जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कांट की गणना विश्व के महत्तम दार्शनिकों में है। कांट का जन्म कोनिग्सबर्ग नगर के एक दरिद्र परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण धार्मिक वातावरण में हुआ। कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में वे गणित, विज्ञान और दर्शन के एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। शिक्षा समाप्त करके वे कुछ दिनों तक जीविका निर्वाह के लिए इधर उधर के संपन्न परिवारों में शिक्षक का कार्य करते रहे। बाद में विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। कुछ वर्षों बाद वे वहीं प्रधानाध्यापक और फिर अध्यक्ष हो गए। उनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी थी और वे गंभीर अध्ययन में तल्लीन रहते थे। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे। उनका प्रत्येक कार्य यथा समय और यथा नियम हुआ करता था। जब वे घूमने निकलते थे तो लोग उनको देखकर अपनी घड़ियां मिलाया करते थे। वे कर्तव्य परायण और उदार हृदय थे। उनका बाह्य जीवन घटना शून्य था। वे अपने प्रांत के बाहर कभी नहीं निकले। कांट का जीवन साधारण, सरल और घटना शून्य होने पर भी उनके विचार अत्यंत असाधारण, जटिल और क्रांतिकारी थे। कांट पर लाइबनिट्ज और वोल्फ के बुद्धिवाद का, लॉक और बर्कले के अनुभववाद का, ह्यूम के संदेहवाद का, वोल्टेयर के ज्ञानवाद का, रूसो के भावुकतावाद का, न्यूटन के भौतिक विज्ञान का और पाइटिस्ट संप्रदाय के धार्मिक आचार का प्रभाव पड़ा और सभी परवर्ती दार्शनिकों पर कांट का भारी प्रभाव पड़ा है। कांट के विख्यात दार्शनिक ग्रंथ हैं। पहला, शुद्ध ज्ञान की परीक्षा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। दूसरा, आचार मूलक ज्ञान की परीक्षा, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। और तीसरा, कला और सौंदर्य मूलक ज्ञान की परीक्षा, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। बुद्धिवाद और इंद्रिय अनुभववाद के दीर्घकालीन संघर्ष को समाप्त कर देने का श्रेय कांट को है। पृष्ठ संख्या 171। बुद्धिवाद और इंद्रिय अनुभववाद, इन दोनों में अपने अपने गुण दोष हैं। दोनों एकांगी हैं। दोनों में आंशिक सत्य है। दोनों में एक भी पूर्णतः सत्य नहीं है। इस संघर्ष में दोनों ही हार कर थक गए। विजय किसी की नहीं हुई। कांट इन दोनों की असफलता को ध्यान में रखकर अपने दर्शन को प्रारंभ करते हैं। कांट अपने दर्शन को आलोचनात्मक या क्रिटिकल और अतींद्रिय या ट्रांसेंडेंटल विज्ञानवाद आइडियलिज्म कहते हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ जान लेना चाहिए। पहले आलोचनात्मक शब्द को लें। बुद्धिवादियों ने आँख मूंद कर बुद्ध का विश्वास किया है। उनके अनुसार बुद्धि अपने स्वतः सिद्ध और सार्वभौम नियमों द्वारा तत्व ज्ञान कर सकती है। गणित का ज्ञान उनका आदर्श रहा है। इसके विपरीत अनुभववादियों ने हमारे सारे ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रिय अनुभव में ही माना है। बुद्ध के कोई नियम अनुभव निरपेक्ष और सहज नहीं हो सकते। कांट के अनुसार बुद्धिवाद का पर्यवसान अंधविश्वास में और अनुभववाद का पर्यवसान संदेहवाद में हुआ है। कांट के अनुसार तत्व समीक्षा के पूर्व ज्ञान समीक्षा अत्यावश्यक है। ज्ञान की उत्पत्ति प्रामाण्य और सीमा जान लेना दर्शन का सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए। यद्यपि लॉक ने तत्व मीमांसा के पहले ज्ञान मीमांसा आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी, तथापि उनकी प्रणाली केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मात्र रह गई और वे ज्ञान की सही आलोचना नहीं कर पाए। यही कारण था कि लॉक का इंद्रिय अनुभववाद ह्यूम में जाकर संदेहवाद बन गया। अतः कांट ने सर्वप्रथम ज्ञान की आलोचना को ही अपना लक्ष्य बनाया। ज्ञान की आलोचना किए बिना ज्ञान की उत्पत्ति प्रामाण्य और सीमा को जाने बिना तत्व समीक्षा करना व्यर्थ है। न तो बुद्धिवादियों के समान ज्ञान में अंधविश्वास करना चाहिए और न इंद्रिय अनुभववादियों के समान ज्ञान में आत्मघाती और अनावश्यक संदेह। बुद्धिवाद के अंधविश्वास या डॉगमेटिज्म और इंद्रिय अनुभववाद के आत्मघाती संदेह या स्केप्टिसिज्म, इन दोनों से बचकर ज्ञान की उत्पत्ति प्रामाण्य और सीमा की सही आलोचना को दर्शन का सर्वप्रथम अत्यावश्यक कार्य मानने के कारण कांट ने अपने दर्शन को आलोचनात्मक या क्रिटिकल कहा है। द्वितीय अतींद्रिय शब्द पर विचार करें। कांट के अनुसार ज्ञान इंद्रिय संवेदन और बुद्ध विकल्प दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है। इंद्रिय संवेदन ज्ञान की सामग्री है। बुद्ध विकल्प इस अस्त व्यस्त सामग्री को ज्ञान का रूप देते हैं। इंद्रिय संवेदन वेदना मात्र है, ज्ञान कहलाने का पात्र नहीं। पृष्ठ संख्या 172। ज्ञान बनने के लिए संवेदनों को बुद्ध विकल्पों द्वारा संग्रहित और निर्धारित होना पड़ता है। अनुभववादियों ने ज्ञान को इंद्रिय संवेदनों से ही बांध दिया और फलतः अनुभववाद का पर्यवसान ह्यूम के आत्मघाती संदेहवाद में हुआ। वस्तुतः इंद्रिय अनुभव के ही आधार पर किसी भी दर्शन की प्रतिष्ठा संभव नहीं हो सकती। इंद्रिय अनुभववाद की भी नहीं। अतः ज्ञान अपनी सामग्री के लिए इंद्रिय संवेदन पर निर्भर रहता हुआ भी अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए अर्थात ज्ञान बनने के लिए इंद्रिय अतीत बुद्ध विकल्पों की शरण लेता है। ज्ञान के इस अतींद्रिय स्वरूप के कारण कांट ने अपने दर्शन को अतींद्रिय या ट्रांसेंडेंटल कहा है। तृतीय, विज्ञानवाद शब्द पर विचार करें। कांट अपने आप को एक विशिष्ट अर्थ में विज्ञानवादी कहते हैं। उनके अनुसार ज्ञान अतींद्रिय होते हुए भी अपनी सामग्री के लिए इंद्रिय अनुभव पर निर्भर रहता है। अतः वास्तविक ज्ञान इंद्रिय संवेदनों के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान व्यवहार तक ही सीमित है, परमार्थ तक उसकी गति नहीं। कांट दृष्ट सृष्टिवाद या जीव सृष्ट विज्ञानवाद या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के प्रबल विरोधी हैं। यह सत्य है कि हमें अपने विज्ञानों का ही ज्ञान होता है, किंतु ये विज्ञान हमारी कल्पना की सृष्टि नहीं है। ये विज्ञान पारमार्थिक स्वलक्षणों या थिंग्स इन देमसेल्व्स द्वारा उत्थापित होते हैं। जिन स्वलक्षणों या परमार्थों का हम कदापि ज्ञान नहीं हो सकता, हमारा व्यवहार या फिनोमिना का ज्ञान सत्य, असंदिग्ध, निश्चित और सार्वभौम है। सत्य इसलिए कि इस ज्ञान की सामग्री इंद्रिय संवेदन या स्वसंवेदन द्वारा प्रसूत होने से इस ज्ञान के संवादी परमार्थ वस्तुतः विद्यमान है और निश्चित एवं सार्वभौम इसलिए कि इस सामग्री को हमारे बुद्ध विकल्पों ने निरूपित किया है। किंतु अतींद्रिय परमार्थों या नॉमिना के विषय में हमारा ज्ञान केवल हमारे काल्पनिक विज्ञानों का ही ज्ञान है, क्योंकि इन विज्ञानों के संवादी परमार्थ संवेदन या स्वसंवेदन के अभाव के कारण वस्तुतः विद्यमान नहीं है। अतः कांट व्यवहार के ज्ञान में वस्तुवादी या इम्पिरिकली रियलिस्ट और परमार्थ के ज्ञान में विज्ञानवादी या ट्रांसेंडेंटली आइडियलिस्ट हैं। उपर्युक्त तीनों विशेषणों से जिनसे कांट ने अपने दर्शन को विशिष्ट किया है, अर्थात आलोचनात्मक, अतींद्रिय और विज्ञानवादी, इन तीनों विशेषणों से कांट के ज्ञान की उत्पत्ति, प्रामाण्य और सीमा विषयक विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 173। ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय संवेदन और बुद्ध विकल्प दोनों के मिलन से होती है। ये दोनों हमारे ज्ञान के माता पिता हैं। दोनों में से एक का भी यदि अभाव हुआ तो या तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं बनेगा बुद्ध विकल्प के अभाव में, या यथार्थ होगा इंद्रिय संवेदन के अभाव में। प्रामाण्य के विषय में कांट का विचार है कि व्यवहार का ज्ञान तो निश्चित एवं प्रामाणिक है, किंतु परमार्थ के ज्ञान के प्रामाण्य को जान लेने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं। सीमा के विषय में कांट का मत स्पष्ट है कि हमारा ज्ञान व्यवहार तक ही सीमित है, परमार्थ तक उसकी गति नहीं। इस पृष्ठभूमि के बाद हम अब इस विषय पर विचार करें कि कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद के लंबे संघर्ष को किस प्रकार समाप्त किया। पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक युग का श्री गणेश बुद्धिवाद के उदय से हुआ। मध्य युग की धार्मिक परंपरा के विरुद्ध, शास्त्र के अयुक्त अंधविश्वासों के विरुद्ध और व्यक्ति के स्वातंत्र तथा तर्क को दबाने के प्रयत्नों के विरुद्ध आधुनिक भौतिक विज्ञान एवं दर्शन बुद्धि का प्रबल शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और विरोधियों को कुचल कर ही दम लिया। विरोधियों की पराजय के बाद भौतिक विज्ञान और दर्शन अपने अलग अलग मार्ग पर चलने लगे। भौतिक विज्ञान इंद्रियानुभूति का आलिंगन करके प्रकृति निरीक्षण और वैज्ञानिक प्रयोगों की सहायता लेता हुआ आगमन तर्क पद्धति द्वारा बाह्य पदार्थों के स्वरूप और पारस्परिक संबंध को बताने वाले निश्चित और सार्वभौम नियमों के अन्वेषण में लगा और दर्शन बुद्धि के सहज स्वतः सिद्ध और सार्वभौम ज्ञान का आलिंगन करके इंद्रिया अनुभूति को हेय और प्रकृति निरीक्षण को व्यर्थ समझता हुआ निगमन तर्क पद्धति द्वारा ईश्वर जीव और जगत के विवेचन में लगा। डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, ओल्फ जैसे बुद्धिवादियों ने गणित के ज्ञान को आदर्श मानकर दर्शन में भी उसी पद्धति को अपनाया। वे यह भूल गए कि गणित और दर्शन एक नहीं है। वे यह भूल गए कि गणित केवल बुद्धि विकल्पों पर ही निर्भर है और वस्तु सत्य का विचार उसका लक्ष्य नहीं है, किंतु दर्शन बुद्धि विकल्पों का आश्रय लेकर वस्तु जगत के तथ्यों को खोजना चाहता है। गणित को केवल इसी से प्रयोजन है कि दो और दो मिलकर चार होते हैं। गणित को इससे प्रयोजन नहीं कि दो और दो पदार्थों में किन पदार्थों की गणना की जाएगी। दो और दो ईंटें मिलकर चार ईंटें होंगी और दो और दो जीव मिलकर चार जीव। किंतु दर्शन का लक्ष्य तो यह जानना है कि ईंटे और जीव है भी या नहीं। इसके लिए इंद्रिय अनुभव का सहारा लेना आवश्यक है, किंतु बुद्धिवाद इंद्रिय अनुभव को छीड़ और मंद ज्ञान कहकर ठुकराता ही रहा। पृष्ठ संख्या 174। धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार करने वाली बुद्धि अपनी शक्ति का निर्णय किए बिना ही अतिंद्रिय पदार्थों के ज्ञान का दंभ भरने लगी और अपने ही अंधविश्वासों की दासी बन गई। इंद्रिय अनुभूति की उपेक्षा करके बुद्धि के सहज स्वयं सिद्ध सार्वभौम और अनुभव निरपेक्ष या अप्रियोरी नियमों को ही ज्ञान का एकमात्र उद्गम स्थान मान लिया गया और दर्शन का लक्ष्य इन नियमों में तिरोहित ज्ञान को प्रकट करना समझा गया। इन नियमों की नींव पर ईश्वर जीव और जगत की सिद्धि के लिए क्रमशः ईश्वर विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रकृति विज्ञान के 3 बौद्धिक प्रासाद निर्मित किए गए। और आश्चर्य की बात तो यह कि नींव एक होते हुए और निर्माण प्रक्रिया एक होते हुए भी विभिन्न बुद्धवादियों ने अपने दर्शन प्रासादों को विभिन्न रूप दिया। आधार और पद्धति समान होने पर भी निष्कर्ष भिन्न भिन्न निकले।